ओम शांति। कैसा था कल बाबा? बताओ कैसा था? प्यार का सागर था, इधर से उत्तर आया और क्या था? रोमांटिक था बहुत, तो रोमांच खड़े कर दिए सबने। ये इंग्लिश के शब्द हिंदी से ही बने हैं। उमंग उत्साह भर दिया, बाबा का स्वरूप याद रहा आजकल का, कितना सुख भरा था। नैनों को क्या देता था? नैनाभिराम कहते हैं इसको, कि उसको देखते रहें और नैनों को तृप्त करते रहें। जाने को तो मन नहीं कर रहा था बाबा का, हम भी देख रहे थे कैसा समय आ गया कि भगवान जाना नहीं चाहता और उसे भेजा जा रहा है जाओ। साकार में जब बाबा थे तो बाबा से जब कोई पूछते थे बाबा आपका ये पाठ कब तक चलेगा, क्या कहते थे बाबा? बोलो। हाँ, बाबा कहते थे थक गए हो क्या, अच्छा नहीं लगता बाबा का आना, हंसी करते थे। तो दादी की तबीयत के कारण, क्योंकि डॉक्टरों ने स्ट्रिक्टली भेजा था अहमदाबाद से, स्ट्रिक्ट करके कि दादी को केवल आधा घंटा ही बैठाना, इससे ज्यादा नहीं। फिर भी सवा घंटा तो बैठा। भगवान जैसे भक्ति में है ना, भगवान भगत के वश में सदा से होते आए, अब यहाँ भी वश हो गए। तो बहुत प्यार का स्वरूप था बाबा का। भगवान अपनी ग्रेट फैमिली को देखकर आनंद विभोर था, असली बात ये थी। कुछ महान आत्माएं आ गई होंगी सभा में, बहुत सारी, जो बाबा को अट्रैक्ट कर रही थी बहुत ज्यादा। देखो बाबा अब ज्ञान देने नहीं आते, सबको बहुत क्लियर रहे, क्योंकि साकार में ही बाबा कह आए थे मैं अपना संपूर्ण ज्ञान तुम्हें देकर साइलेंट हो जाता हूं। ज्ञान दे दिया है उसने सारा, अव्यक्त मूल्यां तो ऐसे कहें ज्ञान का अथाह भंडार हम सब के लिए, कोई कमी नहीं छोड़ी। अब बाबा मिलने आते हैं और प्यार देने आते हैं। मिला ना प्यार, हमने बाबा के अलग अलग स्वरूप देखे, ये स्वरूप अब इस साल जो देखने को मिल रहे हैं, हर टर्न में अलग अलग स्वरूप, तो बहुत सुंदर है ना, मन भावन है ना, है ना? क्या सीखा कल? सदा खुश रहो और खुशियां बांटते चलो। आज इस पे हम चर्चा करेंगे, इसने गीत भी वही बजा दिया। हमें खुश रहना है क्योंकि भगवान को कैसा लगता होगा जब वो देखेगा कि मेरे बच्चे भी खुश नहीं हैं। जिनको संसार को खुशी बांटनी है, जिनको हर आत्मा को प्रसन्न करना है, वो खुश नहीं हैं। रहेंगे खुश? रहते हैं या नहीं वो मैं नहीं पूछूंगा, वो मुझे पता है सब। रहेंगे खुश? कौन कौन सी बात हमारी खुशी को छीनती हैं? और जब छीनने वाली बात आ जाए तो हमें क्या सोचना है, क्या करना है, ताकि विभिन्न बातें, परिस्थितियां, माया हमारी खुशी को छीन कर न ले जाएगी। इसमें भी अच्छे शब्द थे, ये अव्यक्त बाबा के ही बोल थे, खुशी गई माना सब कुछ चला गया। खुशी जाना माना तो जीवन आधा है ना, जिसके जीवन में खुशी न हो, कदम कदम पर गम की लहर रहती हो, मन में उल्टे सुलटे तूफान चलते हो, उसका तो जीवन ही भारी हो जाता है। रोज आते हैं मेरे से तो लोग मिलने, शांतिवन में जब मैं रहता हूँ तो भीड़ ही रहती है सारा दिन, कल की बात बाबा की सुन के तो मैंने भी बड़ा आनंद लिया, नहीं तो कभी कभी मैं भी थक जाता हूँ, लगातार आ रहे हैं, खाने भी नहीं दे रहे, इवन बाथरूम भी नहीं जाने दे रहे हैं, इतना ज्यादा हो गया। लेकिन कल मैंने सोचा भगवान अपने परिवार को देखकर आनंदित है तो हमें भी आनंदित रहना है। सो गया, कपड़े उतार लिए तो भी आगे दोपहर में जाना है भाई जी, मैंने कहा 4 बजे मिले, नहीं अभी जा रहे हैं। देखने में आता है क्यों खुशी गुम होती है। कोई कोई परिवार वाले आते हैं, माताएं आती हैं, हमारा प्रसाद बहुत अच्छा है, हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हमारा योग बहुत अच्छा है, ये सब बातें भी माताओं से और कुछ भाइयों से सुनने को मिलती हैं। कितना अच्छा लगता है। समस्याएं लेकर तो बहुत आते हैं लेकिन ये खुशखबरी सुनाने भी आते हैं, तो पता चलता है कि बाबा के कुछ महान बच्चे जो उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, जो उसकी श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने में तत्पर हैं, कुर्बानी करने को तैयार हैं, लेकिन जो भगवान ने कहा वो करना है, ऐसी आत्माएं भी बहुत हैं। हमें उलझना नहीं है कहीं। अब आप चिंतन करेंगे और बताएंगे खुशी मनुष्य की कहां गुम होती है, व्यर्थ में, अनुमान में। व्यर्थ को भी एक शब्द दे दे, कई लोग बैठे बैठे न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं, सबको अनुभव होगा, न जाने क्या क्या सोचते हैं। माताएं तो बहुत अपनी बातें सुनाती हैं, बच्चे स्कूल में गए हैं, बैठे बैठे परेशान हो रही, पता नहीं कुछ हो न जाए मेरे बच्चों को, आएंगे भी या नहीं आज, इंतजार कर रही है गेट पे खड़े होके। अनुमान मनुष्य को बड़ा दुखी करता है। और पर चिंतन खुशी को नष्ट करता है। फटाफट बोले माताएं, इच्छाएं खुशी को छीन लेती हैं, साथ में कामनाएं भी, और कर्मेंद्रियों का रस। एक अच्छी हंसी की बात सुना दूं। एक माता आई आज, कहा मेरी बहू बहुत लड़ती थी मेरे से फोन बात की होगी, मैंने बताया होगा कि सवेरे उठ के संकल्प करो मेरी बहू बहुत शांत स्वरूप है, तो बताने आई वो इतनी शांत हो गई कि मुझसे बात ही नहीं करती। मैंने कहा अरे खुश रहो ना, लड़ती थी तुम परेशान थी, अब वो अति शांत हो गई तो अच्छी बात है ना। कहा नहीं पर बात तो करे। मैं सोच रहा था संकल्पों का इफेक्ट कितना जबरदस्त है। पिछली क्लास में मैंने कुत्तों की बात सुनाई थी ना, यहाँ वाले जानते हैं संकल्प क्या क्या करते हैं मनुष्य के। अब मैंने उसको दूसरा संकल्प दिया, अब संकल्प करना उठ के मेरी बहू शांत स्वरूप है, बहुत प्रेम स्वरूप भी है, तो ये भी काम हो जाएगा। तो देखो खुशी कैसे गुम होती है। अब इसकी खुशी, पहले खुशी इसलिए गुम थी कि वो लड़ती है, अब खुशी इसलिए गुम है कि लड़ती नहीं है या नहीं। अच्छा और बताओ भाई, पीछे खुशी क्यों गुम होती है। कल की सवेरे की मुरली भी याद कर लो, अव्यक्त यही ओम शांति भवन में। कैसा ग्रुप चाहिए बाबा को, और नहीं और जो मान अपमान सहे, अच्छों को ज्यादा सुनना पड़ता है सहना पड़ता है, ऐसा ग्रुप बाबा चाहते। ये यही की मुरली थी, इसी हॉल की, ओम शांति भवन नहीं बना था, मुझे याद थी तभी हम लोगों के दादी ने ग्रुप बनवाए थे। तो ऐसा ग्रुप चाहिए जो सुने सहन करें लेकिन पुरुषार्थ न छोड़े। आप अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, 4 लोग ये भी कहेंगे चले हैं योगी बनने, देखेंगे कितना दिन करते हैं, फिर हमारे जैसा ही हो जाएंगे ये भी, कोई ना कुछ बोलेंगे लोग, हमने बहुत देखे ऐसा योग करने वाले, योग से क्या होता है। कई लोग कहते हैं तुमने ज्यादा पाप किए क्या जो ज्यादा योग करते हो। योग केवल इसलिए नहीं किया जाता कि पाप ज्यादा किए हों, योग प्रभु मिलन है, योग आत्मा को परम सुख देने वाला है, योग केवल विकर्म नष्ट करने मात्र के लिए नहीं है, योग से तो अतीन्द्रिय सुखों की अनुभूति है। जब कल बाबा के प्रत्यक्ष एक घंटे के मिलन में पूरा हाउल और बाहर संसार में बैठे हुए लाखों लोग आनंदित हो गए, अगर हम उसके साथ रोज 8 घंटे रहें तो हम आनंद करने वाले संसार में हो जाएं। तो खुशी को खोना नहीं है, दूसरे का बुरा व्यवहार खुशी छीनता है। कईयों के अपने संस्कारों के कारण उनकी खुशी जाती है, लेकिन व्यवहार इसमें इम्पोर्टेंट चीज है। अब आप सभी अपने अपने परिवारों को, घरों को देखो, अपने बच्चों को, पति, सास, ससुर, कुमार जो है वो अपने साथियों को देखें, खुशी कहाँ कहाँ जाती है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया और लास्ट में सुनने को मिल गया क्या, खाना बनाया, मेहमान आए थे, 8-10 चीजें बनाई, बड़े आनंदित थे कि आज तो सब लोग गुणगान करेंगे खा के, चुपचाप लोग खा के चले गए, किसी ने जरा भी अप्रिशिएट नहीं किया तो क्या होगा माताओं को कि खा गए, देखा कुछ बोला भी नहीं, थैंक्स भी नहीं दिया, कैसे लोग हैं ये, और सारा दिन सोचते रहे अब के बार आने दो, कुछ नहीं बनाऊंगी इनके लिए। हम कर्म करते हैं। कल हंसी की बात जो बाबा ने की बहुत अच्छी, उसका राज तो हमारी भी समझ में नहीं आया है। आपसे पूछता हूँ, 1-2 दिन काम पे नहीं गए, अभी काम पे चलो, रिपोर्ट भी देना मुझे लगता है बाबा के सामने कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको देखकर बाबा ये कह रहा है। आप सबको क्लियर हो, अब गुलजार दादी वही होती है और बाप दादा भी, तीनों, बीच में दादी बोल देती है, इसलिए कहीं किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मुरली शुरू दादी ने की थी, भाई बहने कहकर, और फिर बाबा ने उसको आगे बढ़ाया। ब्रह्मा बाबा जब थे तब भी ऐसी अनेक बार होता था कि ब्रह्मा बाबा मुरली शुरू करते थे, शिव बाबा उसको आगे बढ़ाते थे, और कभी ऐसा होता था बैठते ही डायरेक्ट शिव बाबा बोलते थे। तो हमें खुश रहना है और बहुत खुशी बांटनी है, बहुत खुशियां बांटनी है। पर मैं कल सोच रहा था ये बात कहने से बाबा के कई लोग बड़े चुस्त हो गए शांतिवन के कई लोग सोच रहे थे हम कम काम करते हैं, बाबा ने कहा रिपोर्ट भी देनी है कि कितनी सेवा करते हो। न जाने बाबा किसको देखकर क्या बोल रहा है ये हम नहीं समझ सकते। न जाने कौन आत्मा सभा में कैसी बैठी है, किसने भक्ति में उसको कितना प्यार किया है, क्या क्या किया है वो हम थोड़े जानते हैं। एक भाई अभी रास्ते में बता रहा था, उसके पास एक बहन जो बैठी थी, कहा वो जब से बाबा आए उसके आंसू रुके ही नहीं, और वो आंसू दुख के तो थे ही नहीं, उसके चेहरे से लग रहा था कि वो भाव विभोर है आज, कि जो पाना था, जो देखना था, वो आज सब सामने है। तो न जाने कौन कौन बैठे हैं, हमारी दृष्टि उन सबको नहीं पहचान सकती। बाबा ऊपर से ही देखता है कौन कौन आ गए हैं बाबा से मिलने के लिए, सबका रेस्पॉन्स दे देता है। तो खुशी को हमें कायम रखना है। अब हम अपने जीवन के लिए, मैं लंबा चौड़ा प्लान नहीं, एक 5-point formula, 5 बातें कुछ भी जो हमारी खुशी को स्थिर रखने में हमें मदद करें, हमें ऐसी 5 बातें आज अपने पास रख लेनी है। बातें बहुत हो सकती हैं, खुशी को गुम करने वाली बहुत चीजें होती हैं, सो हो सकती हैं, किसी की अपवित्रता, किसी का माया का युद्ध, किसी का अभी अभी होने वाला एक्सीडेंट, घर से निकले हैं बच्चे सुखी, बहुत सुखी, 10 मिनट में न्यूज आ रही है डेड, बहुत बड़ी परीक्षा आ जाती है, परीक्षाएं खुशी छीन लेती हैं, डर खुशी को छीन लेता है, अनहोनी घटनाएं खुशी को छीन लेती हैं, और आजकल इविल स्पिरिट्स का बढ़ा हुआ प्रभाव भी बहुतों के जीवन को नष्ट करता जा रहा है। ये बात भी रोज दस दस केस मेरे पास आ जाते हैं। क्या करें भाई, कहीं सेंटर नहीं बनने दे रही वो आत्मा, कहीं किसी बच्चे को एग्जाम नहीं देने दे रही है वो आत्मा, कहीं उनके घर के बिजनेस को नष्ट कर दिया है उन्होंने, कहीं वो बीमार कर रही हैं, कहीं बुरे कर्म कर रही हैं, ये सब भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मैं इसलिए सबको सावधान करता हूँ। कई लोग इन चीजों को नहीं मानते, ये भी सत्य है, हम भी नहीं मानते थे। हमने भी बाबा की मुरलियों से ही मानना शुरू किया, हम भी सोचते हैं सब बेकार है। लेकिन जब ये चीज देखी गई तो पता चलता है कि इनका अस्तित्व तो है। एक बहन की का बुखार 8 मास से ठीक ही नहीं हो रहा था। सारे डॉक्टर सब दवाई दे के चेकअप करा के हार मान चुके थे। इतनी बड़ी फाइल थी उसके पास जब वो डॉक्टर के पास आई और मैं भी बैठा था। मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर मैं कर दूं इसको ठीक? कहा कर दो, इससे अच्छा क्या होगा। मैंने उसको सिखाया, आज ही पानी चार्ज करके पी लो 4-5 बार, एक ही दिन में ठीक हो गया, किसी चेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सब आजकल बहुत खेल चल रहा है संसार में। इसलिए हम सभी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसकी फीलिंग को बहुत बढ़ाएं। बात केवल इसको मंत्र की तरह याद करने की नहीं है। वो तो हम उन्हें कहते हैं जिनसे कुछ होता नहीं, कि चलो रटो इसे, उसे भी कुछ हो जाएगा। लिखने से बहुत फायदा होता है, लेकिन ये बहुत गुड फीलिंग, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ, इस संसार में मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ, इन आत्माओं को भी मुझे मुक्ति का वरदान देना है, मेरे चारों ओर पावरफुल प्रभामंडल है शक्तियों का, इसको हम रोज सवेरे अवश्य किया करें तो ये आत्माएं दूर चली जाएंगी। आज ये केस आया, कोई बहन थी, उसका पति बैठा था, कहा इसमें कई आत्माएं आ गई, हमने उपचार कराए, ठीक हुई, अभी फिर एक जिन आ गया है। जिन मोस्ट पावरफुल होता है, उसको निकालना सहज काम नहीं होता। मैंने तो उनको कुछ विधि बताई, क्योंकि कई अनुभव हो गए हैं योग के इस तरह के। तो कईयों को ये मीडियम बना लेते हैं अपना। बाबा ने जो ध्यान में जाने का पार्ट बंद किया था ना बहुत साल पहले, आपको पता नहीं है, पहले ध्यान में बहुत बहने जाती थी अपने सेंटर्स में, लगभग हर सेंटर में एक बहन संदेशी होती थी। बाबा ने इसको बंद किया था और उसका एक प्रमुख कारण ये था कि इनमें भी ऐसी आत्माएं प्रवेश कर लेती हैं, रास्ते में उन्हें भटका देती हैं। बाबा खड़ा है, वो देख रही है कि बाबा खड़ा है, हमें सोचे ना बाबा खड़ा है, होती हैं वो ये आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, वो कुछ भी रूप रच लेती है अपना, संकल्प से वो रूप निर्माण हो जाता है और इससे बहुत गड़बड़ होने लगी थी और अब इससे ज्यादा गड़बड़ होगी। इसलिए रोज सभी सवेरे एक बार अपने को बहुत पावरफुल स्थिति में स्थित करेंगे, ये संकल्प भले 7 बार करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मेरे चारों ओर शक्तियों का, लाल किरणों का एक पावरफुल आभा मंडल है। तो ये जो हमारी लाल किरणें हैं ना, ये उन आत्माओं को अग्नि की तरह दिखाई देंगी, कोई भी पास नहीं आएगी। बच्चों को भी सिखा सकती हैं सभी माताएं अपने, और बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और कभी बच्चों को ऐसा हो जाए तो आप सिंपल इतना ही करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में स्थित होकर उनके सिर पे अपना राइट हैंड रख दो, ठीक हो जाएंगे। तो हमें अपनी खुशी को खोना नहीं है। पहली चीज ये संकल्प कर ले, मुझे बहुत खुश रहना है। मिलते हैं मुझे कई कुमार मिलते हैं, बहुत खुश, मैं पूछता हूँ पैसा कितना है, पैसा वैसा हमारे पास नहीं है भाई, हमें पैसे वैसे की बात नहीं, हम तो छोटा सा काम करते हैं, अपना गुजारा चलता है। बहुत खुश। मैं पूछता हूँ फिर भी बहुत खुश रहते हो, क्या करना है? भगवान मिल गया, उसका सत्य ज्ञान मिल गया, हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा दुनिया में? और धनवान लोग, अरे फलाने के पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास कम है, सोच सोच के ही दुखी। कंपैरिजन खुशी को नष्ट कर देता है। तुलना किसी भी चीज की, बहनों को तो अच्छे अनुभव है, शादी ब्याह में गई सबकी साड़ी देखती हैं बहनें पहले हाथों में, और यहाँ क्या पहना वो भी देखते, चाहे वो बनावटी हो, आजकल तो बनावटी है ना, चोरों के डर से लोग असली पहनते भी नहीं। अपनी खुशी गुम, तुलना नहीं करनी, हमसे लोग तुलना करें, इन्हें भगवान मिल गए हम खाली रह गए, ये हो सकता है या नहीं भाई लोग? हमसे तुलना करें लोग अपनी, हम क्यों किसी से करें? सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियां हमारे पास हैं, औरों के पास नहीं है। मैं कहा करता हूँ हमसे तो, हमारे श्रेष्ठ भाग्य से तो सारा संसार ईर्ष्या करेगा आगे चल के, कि अरे इन्होंने सब पा लिया हम तो खाली रह गए, होगा या नहीं? सर्वश्रेष्ठ भाग्य किसको प्राप्त है? तो रोज बाबा ने कभी ये होमवर्क कराया है हम सबसे, अपनी प्राप्तियों की एक सुंदर लिस्ट बनाएं। 25 बन सकती हैं बहुत सुंदर प्राप्तियां, 25 बहुत बन सकती हैं, 100 भी। लेकिन जब हम किसे पूछते हैं क्या क्या मिला, कहते सब कुछ मिला, लिस्ट तो बनाओ, दो चार लिख के, कहते पता नहीं और क्या मिला ये भी, क्योंकि बहुत मिल गया तो पता नहीं चलता ना क्या मिला। एक लिस्ट बनाना, उससे बहुत खुशी रहेगी। इस जीवन में मैंने क्या क्या देखा जरा याद करना, इस जीवन में क्या क्या सुना, सत्य ज्ञान गीता ज्ञान डायरेक्ट भगवान से सुना, उसको युग बदलते हुए देखा, वो सृष्टि का निर्माण कैसे करता है अपनी आंखों से देखा है, वो अपने बच्चों से प्यार कैसे करता है ये हमने आंखों से देखा, कल देखा ना, वो ताज तिलक स्वर्ग की बादशाही कैसे देता है वो हमने इन आंखों से देखा। मुरली है, एक ही बात सुना देता हूँ फिर गीत बजाना। बॉम्बे में मुरली चली, कुछ गरीब लोग आए थे मुरली सुनने, बाबा बॉम्बे में गए हुए थे, बहुत पावरफुल मुरली, कभी आप टेप से सुन लो। मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं गरीबों को साहूकार बनाऊंगा, साहूकारों को गरीब बना दूंगा, बिल्कुल मैं तो कम पावर से बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहा था फुल नशे से, सब कुछ मेरे हाथ में है। कभी तो बाबा कहता है नहीं ड्रामा के हाथ में है ये वो, पर सत्यता तो यही है कि सब कुछ बाबा के, और वो बाबा किसका? तो जो हमारा है उसके हाथ में सब कुछ है। मैं माताओं का करता हूँ, यदि आपके हाथ में कागज और पेन दे दिया जाए कि लो आपके दो बच्चे इनका भाग्य लिख दो कैसा चाहती हो, जो लिख दोगी तथास्तु, क्या लिखेंगी माताएं? बस अच्छा ही। आपके पास शब्द नहीं है क्या आप लिखेंगी? मेरा बेटा राजा बन जाए, सबसे ज्यादा पढ़ लिख जाए, चरित्रवान कुलदीपक, सबसे ज्यादा धनवान भाग्यवान, सदा निरोग रहे सुखी रहे, होगा या नहीं? हमारी माँ कौन है? कौन है? और वो है भाग्य विधाता। अब उसको भी हमारा भाग्य लिखना, तो कैसे लिखेगा? तो क्या क्या देखा हमने, इस नशे में यदि हम आ जाएं तो कोई हमारी खुशी को छीनने की ताकत ही नहीं रख सकता, माया भी भाग जाएगी डर के। चलो अभी गीत बजता है और सभी बुद्धि को स्थिर करेंगे परम धाम में, उसकी किरणें पड़ रही हैं मुझ पर। प्रभु का ध्यान की सब याद रखेंगे। प्रेम और खुशी, इनमें सबसे ज्यादा हीलिंग एनर्जी है। हीलिंग एनर्जी माना रोगों को ठीक करने की शक्ति। तो बहुत खुश रहते हैं और जिनके मन में सभी के लिए निर्मल प्रेम है वो हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जो परेशान रहते हैं, जो बहुत सोचते हैं, वो रोगी भी ज्यादा होंगे। जिन माताओं को परेशानियां ज्यादा हैं, वो जरा खुश रहने का संकल्प कर लें। बातें तो आएंगी और जाएंगी, कलयुग का अंत है या सतयुग है? यहाँ क्या होगा कलयुग के अंत में? क्या चारों अंधेरा है? रोग शोक कष्ट सब कुछ भरपूर है ना? कामनाओं को भी कम करना है, इच्छाओं की भी गुलामी नहीं करनी है। कामनाएं जितनी कम होंगी हम बहुत खुश रहेंगे। सब विचार करेंगे, हर मनुष्य के पास बहुत सारी कामनाएं रहती हैं। कामनाएं माना मनुष्यों से चाहना कुछ, इच्छाएं अलग, वो पदार्थों की हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन कामनाएं मनुष्यों की। जैसे मैंने भोजन का उदाहरण दिया, आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया, दिल से बनाया, लेकिन एक कामना थी ना कि लोग अप्रिशिएट करें, थोड़ी महिमा तो कर दें। वो नहीं हुई तो खुशी कम होती है। इसको छोड़ देना है, हमारा काम था, हमने अच्छा भोजन बनाया, खा के लोग खुश हो के गए, बस ठीक है। बच्चों से कामना, साथियों से, बहू से, सास से, जो कुछ भी ये कामनाएं हैं, इनको थोड़ा कम करते चलेंगे, हो सकता है? सोचेंगे सभी, क्योंकि खुशी बहुत बड़ा खजाना है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, बाप अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देगा, खास उनको। इसका उत्तर भी दिया, क्यों? क्योंकि तुम बच्चे रोज बाबा को भोग लगाते हो, तो जब बाप भूखा नहीं रहता तो बच्चों को भूखा कैसे रखेगा? और जो भोग नहीं लगाते उनका क्या हाल होगा, ये खुद सोच लो आप। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है दूसरों का व्यवहार, जो मनुष्य की खुशी को छीनता है। कई लोग दूसरों को स्वतंत्र भी नहीं रहने देते, बहुत दबाव में रखते हैं। जो इंचार्ज होते हैं ना, उनके साथी ने जरा सा बिना पूछे कुछ कर लिया, बस आई मुसीबत उस बेचारे की। मैं खोल नहीं रहा हूं ज्यादा, समझ गए ना सभी? मतलब वो सोचते हैं मेरी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, तुमने काम क्यों किया? ऐसे में खुशी चली जाती है, हैं? नहीं, मधुबन में भोग जब आप भोजन खाते हैं तब भी तो लगाते हैं ना, वो भी बाबा को स्वीकार कराते हैं ना भोग, और हम सब मिलके ही लगाते हैं ना। जैसे आज लगाया तो हम सब ने लगाया ना, तो बाबा को वो सबकी भावनाएं स्वीकार हो जाती हैं। बाबा के पास बहुत ज्यादा महत्व है प्यार और भावनाओं का। देखिए, बुद्धिमान एक तरफ और भावना प्रधान दूसरी तरफ, किसका ज्यादा महत्व होगा? बुद्धिमानों का नहीं। बाबा के ज्ञान में भी जो अति बुद्धिमान है वो बहुत अच्छे योगी नहीं बन पाते, क्योंकि योगी बनने के लिए भावनात्मक हृदय का होना भी परम आवश्यक है। विशेष रूप से हम ध्यान दें दूसरों के व्यवहार पर, के दूसरों के बोल हमारी खुशी को छीने नहीं। भिन्न भिन्न बातें इसमें हो सकती हैं, कोई आपको बार बार बोलता है, कोई आपको बार बार करेक्शन देता है, कोई कोई आपके कार्यों में बार बार नुक्स निकालता है, कोई आपके पीछे ही पड़ा हुआ है, पूर्व जन्मों का बदला लेने आया है, बहुत तंग किया था अभी छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ऐसे बच्चे आते हैं, माताएं बच्चों को लेके आती हैं, ये मुझे बहुत तंग करता है। परसों एक बैठा, बच्चा छोटा होगा 10 साल का, जैसे वो कह रही थी ना तो बच्चा बहुत खुश हो रहा था। इसका रहस्य यही है, क्योंकि इसने उसको कस दिया है। अब जब वो देखता है बदला लिया जा रहा है तो आनंदित होता है। मैं उसको कई बार देखा, मैंने जानबूझ के उसको कुछ कहा, माँ बहुत तंग करती है तुम्हें, तुम माँ को बहुत तंग करते हो, सिर हिला के बड़ा खुश हुआ। तो एक चीज पे ही ध्यान देना है, बाबा ने हमें कितना ज्यादा प्यार दिया। अगर इस प्यार में हम तृप्त हो जाएं, तो किसी और के प्यार की जरूरत नहीं रहती। बाबा के कुछ सुंदर बोल हमारे कानों में गूंजने लगे तो और किसी के बोल हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। परंतु ये बहुत आवश्यक है, अगर हम दूसरों की खुशी को छीनेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे। कुछ कड़वी बातें सुना देता हूँ, सुना दूं? जिसके पाप बहुत ज्यादा हैं वो भी खुश नहीं रहते, जिसने संगम युग पर सूक्ष्म पाप बहुत कर लिए वो भी खुश नहीं रहते। बाबा का बहुत ही गहरा महावाक्य है कभी का, कि तुम्हें 63 जन्मों के विकर्म नष्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन संगम युग पर ब्राह्मण बनने के बाद जो सूक्ष्म विकर्म होते हैं उनको नष्ट करने में बहुत बहुत मेहनत पड़ती है। किसी को सताना, किसी की खुशी छीन लेना, किसी की शांति नष्ट कर देना, और भी बहुत पाप। एक व्यक्ति मधुबन में आया है सुख पाने, हम उसको सुख न लेने दें। एक व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पित किया है एक महान लक्ष्य को लेकर, उसे हम निकलवा दें। छोटे पाप हैं बड़े, कमी तो किसी की भी हो सकती है। जो यहाँ समर्पित हुआ है वो कोई संपूर्ण थोड़ा ही है, जो संपूर्ण आत्माएं आएंगी सब अपूर्ण आए हैं। कोई कोई कमी लेकर आया, कोई कोई कमी लेकर आया है। हम यदि अच्छे हैं तो हमें उन्हें योग्य बनाना चाहिए, ये महानता है। तो ये सूक्ष्म पाप, कई लोग इंचार्ज बन जाते हैं बाहर भी, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज बहुत करते हैं, वो सूक्ष्म पाप उनको खा जाते हैं। बाबा के पास बैठ के भी उन्हें खुशी नहीं होती। कल ऐसे भी लोग थे सभा में, सबने आनंद लिया, और 50 ऐसे भी थे जो उदास बैठे थे। मेरे पास आए, दो चार तो आ गए कि हमें बाबा का कोई अनुभव नहीं होता, मुझे तो पता है क्यों नहीं होता, सूक्ष्म पाप से आत्मा दबी हुई है। वो उनके चेहरे वर्णन कर रहे हैं, इस सूक्ष्म पाप से हमें बचना है। हमें कोई अथॉरिटी मिली है सुख देने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, पावर को मिसयूज करने के लिए नहीं। मैं तो कभी कभी देखता हूँ किसी को एक कमरे का भी इंचार्ज बना दिया जाए ना, फटाफट नशा चढ़ जाता है। सुशील अनुभव है कहीं? सोचते हैं वाह रे, मैं कई योग कहता हूँ यार हमें 50 यहाँ हो गए, हमें तो अब तक भी नशा नहीं चढ़ा, तुम्हें 1 में ही चढ़ गया। नहीं चढ़ना चाहिए। असली मालिक कौन? ऊपर बैठा है। उसको भूल के मैं इंचार्ज हूँ, माना कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो। इसलिए ऐसी आत्माएं खुश नहीं रह सकती जो खुशी बिखेरते हैं, जो सबको कष्ट हरते हैं, वो सदा खुश रहते हैं, विनाश काल में भी खुश रहेंगे। कैसे हम खुशी दे सकते हैं दूसरों को? हाँ, बोलते जाओ, क्योंकि बाबा ने ये भी काम दिया, खुश रहो और खुशी बांटो। कैसे बांटेंगे? मीठे बोल से, सम्मान देकर, प्यार देकर, छोटलाल ने क्या बोला, सुख देकर, सहयोग देकर, दुआएं देकर। एक और अच्छी बात जो आप रोज अपने घरों में करें, एक दूसरे के कार्यों को अप्रिशिएट करके प्रशंसा करो। बहू भी आई ना आपके घर में, खाना थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ ना, कहो बहुत अच्छा बना है, बस ये थोड़ा और कर लेना, कल और अच्छा बनेगा। कर दिए माताएं या नहीं? या कहीं क्या घर से सीख के आई, तुम्हारी माँ ने क्या क्या सिखाया तुम्हें? कुछ नहीं सीख के आई तुम तो। सिखाने वाले ही संसार में महान होते हैं। जो सोचते हैं कि दूसरे तो सब कुछ सीख कर आए हैं बस, वो कुछ नहीं कर पाते। हमें सिखाना है तो अप्रिशिएट करेंगे, सुख देंगे, दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, दुआएं लेंगे और देंगे, तो घर में खुशी का माहौल पैदा हो जाएगा। माताओं के हाथ में है, भाइयों के हाथ में भी है, पर अपने अपने घरों में खुशी का माहौल बनाना मात्र शक्ति के हाथ में है। बोलो, है या नहीं? इसलिए दो सुंदर धारणाएं बाबा की, बड़ी बात को छोटा करना, जो ऐसा करना जानते हैं उनके घरों में खुशी रहती है। ठीक बात है या नहीं? कई लोग छोटी बातों को बढ़ाते रखते, सारा दिन परेशान रहेंगे एक बात में ही। बड़ी बात को छोटा कर देना, बाबा के मावा के वो छोटी हो जाएगी। और दूसरा, बातों को पकड़कर न रखना, तो बातें तो रोज आएंगी परिवारों में। ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ न हो, कुछ तो होता रहेगा। बातों को छोड़ते चले, रिलीज करें। हमारे ऊपर तो बाबा की बातें छाई रहें, बाकी किसी की बात स्लिप होती रहे। हो सकता है ऐसा, ऐसे चिकने घड़े बन जाएं, दूसरे की बात न ठहरे और वो कलश वो घड़ा अमृत से भर जाए। हाँ, फीलिंग से भी बहुत खुशी नष्ट होती है लोगों की। जिसको फीलिंग बहुत आती है उनका तो जीवन ही बेकार। एक युवक, मैं उसको 10 जगह भेज चुका हूँ अब तक, सब जगह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि फीलिंग बहुत है। आ जाए, मैंने कहा बस भैया बहुत होगा, कहीं नौकरी कर लो तुम। फीलिंग बहुत बड़ी बीमारी, बुरी फीलिंग। कैसे बचेंगे इससे? स्वमान को जागृत करें, विचारों को महान बनाना होगा। इसमें बहुत जरूरत है ज्ञान के बल की, मूल्यों की अच्छी स्टडी करें ताकि ज्ञान हमारे लिए बल बन जाए। एक ही ज्ञान की बात को यूज करें और अपनी फीलिंग को नष्ट करने का लक्ष्य बना लें। मुझे बहुत फीलिंग आती है, मुझे बहुत फीलिंग आती है, ये नहीं, मुझे फीलिंग आनी नहीं है। अब मैं सिर सकती हूँ, मेरे भगत देख लेंगे, मूड ऑफ है आज देवी का तो क्या हाल होगा। सब भक्तों को सामने खड़ा कर दो अपने, मैं मंदिर में इष्ट देवी हूँ, भगत देख रहे हैं मेरा मूड आज उदास हूँ, मूड ऑफ है, तो भगत बेचारे भाग जाएंगे, हमारी देवी आंसू बहा रही है आज। सब लक्ष्य बनाए बहुत अच्छा, हमें फीलिंग प्रूफ बनना है। मैंने भी अपनी फीलिंग को जीता, यही जीता, इसी हॉल में बाबा की अच्छी अच्छी बातें मिली, बहुत दिन एक लहर चली, परफेक्ट माना, नो इफेक्ट, फीलिंग प्रूफ माना फुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली बाबा की। ज्ञान में फुल हो जाओ, फीलिंग खत्म हो जाएगी। ये बीमारी है बाबा, इसको फ्लू ही कहते थे, फीलिंग फ्लू की बीमारी है। आजकल जो चलता है ना चिकनगुनिया, क्या वो भी है ये तो, जिसे हड्डी वड्डी दुखने लगती है, ज्वाइंट पेन हो जाता है, ये तो बड़ा खतरनाक है, आत्मा को निर्बल करता जाता है। तो हम अपने को शक्तिशाली बनाते चलें। अब आप 5 पॉइंट प्रोग्राम बना लेना अपने जीवन के लिए, दूसरों की बातें सुनकर खुशी गुम न हो, हम क्या करें, इच्छाएं और कामनाओं को कम करें। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, रोज सवेरे मन को डांस कराएं। याद है पहली मुरली, मन को शांत करो, डांस कराओ, शक्तिशाली बनाओ। रोज मन को सवेरे डांस कराना जान लें। इसलिए हमारा योग केवल सूखा ना हो कि हम एकाग्रता कर रहे हैं, हमारा योग बाबा से रूढ़िहान वाला, हमारा योग मन में सुंदर विचारों वाला, हमारा योग ऐसा जिससे मन आनंदित होने लगे। योगी वही बनते हैं जो सुंदर विचारों के साथ योग करते हैं। आप योग करें, 10 मिनट बैठें और संकल्प कर लें, मुझे दुखी आत्माओं के दुख हरने हैं आज योग के वाइब्रेशन से। योग पावरफुल हो जाएगा। बाबा ने कहा है, जब तुम देह से न्यारे होते हो तो विश्व को शांति का दान मिलता है, मुझे अब शांति का दान देना है। बाबा ने कहा जब तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो तो सृष्टि को सुखों का दान मिलता है, मुझे सुख के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। लक्ष्य लेकर श्रेष्ठ विचारों के साथ योग करेंगे, योग अच्छा लगेगा। ऐसे सोचेंगे बाबा को याद करना, बाबा बाबा, नहीं होगा कुछ। बातें करो बाबा से, तुमने हमें क्या क्या दिया उसके लिए उसकी शुक्रिया करने लगो। देखो कैसे मन उसके प्यार में भरपूर होता है और एकाग्रता कितनी अच्छी होती है। ये प्यार तो भक्ति में भी चलता है ना, कुछ भक्त भी हुए जो एकाग्र हो गए। प्यार एकाग्रता का बहुत सुंदर आधार है। और बाबा से प्यार होता है जब उसकी द्वारा मिली प्राप्तियां बहुत याद रहती हैं, जब ये फीलिंग रहती है वो मेरा है, अपनों से प्यार होता है ना, जब हम उसे बातें करते रहे, उसे जुड़े रहें, उसे डिस्कनेक्ट ना हो, उससे कनेक्शन हमारा टूट न जाए। भगवान से कनेक्शन मिला है, टेलीफोन का कनेक्शन है तो डायरेक्ट वायरलेस का कनेक्शन बना रहे, तो सवेरे ही मन में खुशी देने वाले संकल्प। और एक लास्ट बात आपके सामने रख दूं, बहुत हल्का अपने को रखना है। किसी ने कुछ कह दिया, एकदम भारी हो गए, इस संस्कार को जरा बदलें। किसी ने कुछ कहा, हम भी तो कह देते हैं, हमसे गलती हुई, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं भाई, अपनी गलती को ठीक करेंगे, हमने गलती की ना, इसलिए कहने वाले तो कहेंगे ना। और कई ऐसे भी हैं, तुम अच्छा करो या बुरा करो तो कहेंगे ही, उनके लिए चिंता नहीं, उनकी सुननी नहीं है। पर अपने को जितना हम अच्छे स्वमान में स्थित रखेंगे, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप रहेंगे, उतना उतना दूसरे भी हमें सम्मान देंगे, गलत बोल नहीं बोलेंगे। और हम में भी ताकत रहेगी कि अगर कोई गलत बोलता है तो हम सहज रूप से उसे समाप्त करते चलेंगे। तो एक बहुत सुंदर स्थिति है, नो इफेक्ट, परफेक्ट माना, नो इफेक्ट। बाबा ने ये कई बार कहा, जब परिस्थितियों का तुम पे इफेक्ट ना हो, जब किसी के अपमान का तुम पर इफेक्ट ना हो, जब किसी भी चीज का, प्रकृति की हलचल का तुम पे इफेक्ट ना हो, समझ लो तुम परफेक्शन के नजदीक हो। तो सभी अपना अपना एक सुंदर प्लान बनाएंगे, हम खुश रहेंगे। चैलेंज कर दो, संसार की कोई शक्ति, माया की कोई शक्ति हमारी खुशी को, बोला नहीं जा रहा है तो, हमारी खुशी को छीन नहीं सकती। हमारी खुशी दूसरों के लिए दवाई बन जाएगी, आपकी खुशी आपके बच्चों को प्राण दान देने वाली बन जाएगी। ये संकल्प करके अपने अपने घरों में, जहाँ जहाँ आप रहते हैं, खुशी का माहौल क्रिएट करना है। मैं जब खुशी की बात बाबा करता है तो दादी प्रकाश मणि मुझे याद आती है, किचन में आई, माना खुशी का आनंद की लहरें छा गई, किसी को डर नहीं कि दादी आ गई, दादी आ गई, खुश एकदम। तो ऐसी कुछ आत्माएं महान हमारे बीच में हैं और रही हैं, जिनके कहीं जाते ही माहौल हल्का और खुशनुमा हो जाता है। बस ये दो बात याद रखेंगे, अपने अपने घरों के माहौल को हल्का, दबाव वाला नहीं, हल्का, जहाँ सबको जीने का मन करे, और बहुत खुशनुमा बनाएंगे। ओम शांति।